नमस्कार दर्शकों, आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम मार्गदर्शन में मैं मोना देसाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हमारे बीच नागपुर शहर की वो महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं जो एक अपने आप में गृहिणी हैं, जो परिवार और समाज में अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं और साथ ही में अपने परिवार को और समाज को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का उनका प्रयास है। तो मैं उन सभी महिलाओं का भी मैं स्वागत करती हूं। परिवार के साथ, समाज के साथ सामंजस्य करते हुए कई परेशानियां, कई उलझने, कई मन के तनाव भी कहीं न कहीं जन्म लेते हैं छोटे मोटे स्वरूपों में, और उन समस्याओं से समाधान देने के लिए आज हमारे बीच मार्गदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी। मैं दीदी जी का स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। दीदी जी विदर्भ सब जोन नागपुर की संचालिका हैं और पिछले 56 वर्षों से दीदी ने अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। दीदी मृदुभाषी, सरल और बहुत ही सहज हैं। तो आज हम दीदी से अपनी कुछ समस्याओं का, अपने कुछ प्रश्नों का समाधान और मार्गदर्शन चाहेंगे। तो दीदी हम शुरू करें आज के प्रश्न उत्तर की यह श्रृंखला, और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी पूजा सिंघानिया का, जो अपने कोई किसी प्रश्न का दीदी से जवाब चाहती।
नमस्ते दीदी। आजकल देखा गया है कि बुरे व्यक्ति जो भी कर्म करे उनके साथ अच्छा ही होता है, और जो अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उसके बाद भी उनका बुरा ही होता है, तो ऐसा क्यों?
ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, एक कर्म भूमि है, और ये भी उतना ही सत्य है कि जो बीज बोएंगे वो कुछ समय के पश्चात उसका फल काटेंगे, और कई बीज का समय ऐसा आता है जो आज हम एक बीज बो रहे हैं और फसल हम दूसरी काट रहे हैं, फिर आगे चल करके कुछ मास के बाद वही क्रम रिपीट होता है। एक क्वालिटी का हम बीज डालते हैं और दूसरा हम फल काटते हैं, क्योंकि जो आज हमने बीज बोया उसका उसी समय फल नहीं मिलता है, उसका फल कुछ समय के पश्चात वो मिलता है, और हर कर्म का अपना अपना रिजल्ट जरूर है। इसी तरह से ये जो इस सृष्टि के अंदर हम पाठ बजा रहे हैं, इस सृष्टि के तीन काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इस चीज को हम सभी मानते हैं, तो सत्यता यह है कि जो हमने भूतकाल में कर्म किया आज उसका प्रेजेंट में हम उसका फल ले रहे हैं, और प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसका भविष्य में मिलने वाला है। इसलिए हमारी नजरों से ये दिखाई देता कि वो बुरा कर रहा है अच्छा पा रहा है, वो अच्छा कर रहा है बुरा पा रहा है, यह हमारी स्थूल में नजरें देखती है। परंतु हमारे कर्म का विधान क्या है वो हमारा विधाता जानता है। हम तीन कालों को न जानने के कारण हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, बाकी जो किया है उसी का फल मिलना है। इसलिए आज अगर मुझे कोई तकलीफ है तो इस समय हम सावधान हों कि जब मैंने पीछे कुछ किया तब आज ये ले रही हूं, आगे के लिए तो कम से कम अपना भविष्य तो सुधारूं। जिसलिए देखेंगे कोई दुख आता है सुख आता है तो कहते हैं किस्मत, उस समय किस्मत, या कहेंगे मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे इस समय मिल रहा है, तो भूतकाल के कर्मों का। भूतकाल में इसलिए कहते हो कि जो एक एक सेकंड अभी बीतता, जो प्रेजेंट है एक सेकंड के बाद वो भूतकाल हो जाता है, इसलिए वो तीनों काल का कनेक्शन होने के कारण हम केवल प्रेजेंट को देखते हैं तब हमारे मन में ये प्रश्न आता है। बाकी परमात्मा की दुनिया में कभी कभी हम कह देते हैं इंसाफ नहीं है जब ऐसी समस्या देखते हैं, परंतु ईश्वर की दुनिया में सदा इंसाफ है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा सो उतना ही पाएगा। तब कहा जाता है कर्म से समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो फिर हमारे प्रश्न मन में समाप्त हो जाते हैं।
तो दीदी मुझे लगता है कि ये सब अपने कर्मों का ही फल है जो हम आज देख रहे हैं कि बुराई करने वाले को जो अच्छा मिल रहा है तो उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे या भूतकाल में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिसका उसको लाभ इस जन्म में या आज में मिल रहा है। तो हम वर्तमान में जो जी रहे हैं, कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दीदी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे साथ हैं श्रीमती नीतू सिंह जो अपने प्रश्न का जवाब चाहती हैं। तो आपका प्रश्न सादर आमंत्रित है।
नमस्ते दीदी, आजकल बच्चों में जो इतना आक्रोश और असंतुष्टि देखने को मिलती है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं?
वर्तमान समय एक तो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव आज के बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि वो देखते हैं उसके घर में ये है, वो इस डिग्री पे पहुंचा है, वो उसके ऊपर पहुंच गया है। तो जिस कारण से कहा जाता है कि आज वैज्ञानिक युग तो है पर कंपटीशन का युग भी बन गया। कंपटीशन युग का युग होने के कारण उनके संस्कार उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो एक तो ये रहा वातावरण का, दूसरी चीज कभी उनकी अपनी उन्नति के लिए काफी सुंदर उनके पास प्लान भी होते हैं, पर हम उसकी मान जो मात पिता हैं, हमारा कर्तव्य है कि इसकी बच्चे की क्या इच्छा है, इच्छा के साथ साथ उसकी योग्यता क्या है। इच्छा को भी देखें, योग्यता को भी देखें। अगर माँ बाप इस चीज को अच्छी तरह से पहचानते हैं तो वो बच्चों को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं। तीसरी चीज, हमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए चांस देना चाहिए। कई परिवारों के अंदर ये एक नेचर बन जाती कि हम बड़े हैं, हमने जो कहा हमारे बच्चों ने मानना ही चाहिए, परंतु ये बात कब तक चलते, बच्चे छोटे हैं तब। पर तो बड़े होने के बाद आप उसको जो ट्रीट करें, उनसे व्यवहार करें, वो एक फ्रेंडशिप का करें, ताकि वो अपने दिल की बात आपको सुना सके। क्योंकि अगर बच्चा आपको अपने दिल की बात आपको नहीं सुनाएगा, आप उस चीज को समझेंगे नहीं, उसकी योग्यता विशेषताओं को आप आगे बढ़ा नहीं सकेंगे, तो स्वाभाविक है वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए उनसे इतना आपस में प्यार करना रखे, बच्चों को इतनी पालना दे। पालना का मतलब केवल भोजन खिलाना, वस्त्र देना नहीं है, केवल पढ़ाई पढ़ाना नहीं है, उसमें खर्च लगाना केवल नहीं है, वो तो है, उसके साथ साथ उसके मन के विचारों को, उसके मन की ताकत को पहचानना, ये मां का कर्तव्य होता है। क्यों कहा जाता है माता गुरु? जब माता सचमुच गुरु का काम करे तो बच्चों को योग्य रास्ता बता सकती है और बच्चों को संतुष्ट कर सकते। तो जैसे कई बच्चे आजकल कह देते हैं बड़े तो बस अपनी थोपते हैं हमारे ऊपर, क्यों कहने का मौका मिलता है? क्योंकि हमने उनकी मनसा की बातों को समझा नहीं है। तो इसलिए इस व्यवहार के अंदर, उनके हैंडलिंग करने के अंदर थोड़ा हमें ये एडिशन करना चाहिए। जितना ये आप करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे।
नीतू जी भी इस बात से सहमत हैं, और ये सिर्फ नीतू जी का ही प्रश्न नहीं है, कई परिवारों में ये समस्या है। और जैसा कि दीदी आपने बताया कि वातावरण ही ऐसा है और कंपटीशन आने के कारण, या हो सकता है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं और समय दे पा रहे हैं तो उनके मन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दीदी आपकी इन बातों से नीतू जी के साथ साथ उनके जैसी और कई माताओं का भी समाधान हुआ होगा, उनके प्रश्नों का भी। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं शिल्पा विठलानी जी जो कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। शिल्पा विठलानी जी आपका स्वागत है।
नमस्कार दीदी। हम जो सपने देखते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारी जिंदगी में कुछ संकेत लेके आते हैं या वो ऐसे ही रहते हैं?
ये हमारे विचारों से संबंधित होते हैं। दिन भर में जो हम विचार करते हैं, मन में विचार तो बहुत आते हैं, परंतु कुछ विचार काफी गहराई तक जाते हैं। तो कुछ समय तक ये नहीं है कि आज ही आपने विचार किया, पर जो चीज आपके संस्कारों में भर गई या वर्तमान आपने विचार किया, दिन भर किया या जो कार्य किया, जिस उसका गहरा असर जो मन पे आया, उसके परिणाम स्वरूप हमारे को स्वप्न आते हैं। जैसे एक का कहते, एक टेलर था, सोया नींद में चादर फाड़ रहा था, क्योंकि उस समय उसके पास चादर थी और कुछ नहीं था। तो मां ने जगाया, बेटा ये क्या कर रहे हो? का मां मुझे छोड़ो, मैं कपड़े काट रहा हूं, क्योंकि दिन भर वो कार्य करता है। वही विचार चलते हैं, ये असर हमारे गहरे विचारों का होता है। इसलिए कहा जाता है कि दिन भर में अपने विचारों को बहुत लाइट रखो, कार्य के विचार जरूर चलाओ, परंतु जो एक्स्ट्रा विचार हैं वो नहीं लाओ। कार्य करो पर लाइट मन से करो, तो फिर इस प्रकार के स्वप्न हमारे को नहीं आएंगे, और आते हैं उसको रोक नहीं सकते। पर कम से कम अगर अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, प्रभु की याद में बीते हुए दिन होंगे, तो आपको स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे।
बहुत सही कहा दीदी ने। हम अपने आप को यदि जीवन की दिनचर्याओं में या ईश्वरीय या जो हमें कार्य पसंद है उसमें यदि हम अपने आप को व्यस्त कर लें, तो मुझे लगता है कि हम अपने इन विचारों को हम एक पूर्ण विराम दे सकते हैं। और यदि हम
सपनों की क्वालिटी अच्छी
बन सकती है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। और इन विचारों से यदि अच्छे स्वप्न आते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन को जीवन में सार्थकता लाते हैं, ऐसा मुझे और खुशी लाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब आपसे हमें मिला है। और अब हमारे बीच हैं अलका अग्रवाल जी, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ।
नमस्कार दीदी। दीदी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज शांति की सबको आवश्यकता है। भौतिक सुख हमें स्थूल में बहुत मिल सकते हैं। मार्केट में जाएंगे, भिन्न भिन्न वस्तुएं भी हमें मन चाही मिल जाती है, परंतु शांति कोई मार्केट में मिलने वाली वस्तु नहीं है। ये भी हम आपको आपके स्वरूप की पहचान दिलाएं कि शांति का भंडार हमारे अंदर है, हमारा ही स्वरूप है, हम केवल बाहर ढूंढ रहे हैं। कारण कि हम अपने आंतरिक को नहीं, अंतरात्मा को नहीं पहचान पाते। जब अगर अपनी आत्मा को हम पहचान लें, उस स्वरूप में स्थित हो जावे, तो शांति हमको ऑटोमेटिक मिलेगी, कि आत्मा स्वयं भी शांत स्वरूप है, शांति के सागर परमात्मा की संतान है, शांति धाम, परम धाम हमारा घर है, तो शांति हमसे कहां दूर जा सकती है। पर हमारे को अशांति का अनुभव कब होता है? जिस समय कोई समस्या आती है, हम उसको फेस नहीं कर सकते हैं। फेस न कर सकने के कारण वो फिर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है जो सारे मेरे को ही कहते हैं? कोई मेरे दिल को समझने की भी कोशिश नहीं करता है, मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करता है। इस प्रकार के हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प आते हैं जो हमें बेचैन कर देते हैं, नींद को उड़ा देते हैं, फिर नींद नहीं आती और थकावट का अनुभव करते हैं, फिर और हमारा तनाव टेंशन एक बढ़ता जाता है। वो फिर हमारे व्यवहार के अंदर आने लगता है कि वो खुश है उस समय का व्यवहार, जब कुछ चिंतन में है, कुछ सोच में है, कोई दुविधा के अंदर है, उस समय का व्यवहार बहुत चेंज हो जाता है। कई बारी वो देख करके परिवार वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये सदा अपने आप में खोई खोई से रहती है, क्या बात है। इसलिए सबसे पहले हम समस्याओं को अधिक न विचार करें। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, उसके अंदर कई फल लगे हुए हैं। पहले तो टहनियां अनेक है, हर टहनी के अंदर फल कड़वा लगा हुआ है। आप अगर ये प्रयास करो इस टहनी के ऊपर फल है, उस टहनी को काट दो, वो टहनी पर कड़वा फल है, काट दो, परंतु क्या वो समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। आज जिस टहनी को काटेंगे, कल उसके एक की बजाय चार फांटे और फूटेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, देख रहे हैं कि दुखों की हम जो हमको सामने में वो दिखाई देती है, इसलिए हम टहनियों को काट रहे हैं। परंतु जड़ जो गुप्त होती है उसको हम नहीं काट रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है जड़ गुप्त जरूर है परंतु उसकी पावर ज्यादा है। एक बार वो समाप्त हुई तो बाद में कड़वा फल कहीं से नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम एक एक दुख के पीछे ना जाएं। उसने ऐसे बोला मैं बेचैन हो गई, उसने दूसरा ऐसा काम कर दिया मैं बेचैन हो गई, तीसरे ने वो कर दिया मैं और बेचैन हो गई। परंतु इसके लिए स्वयं को पहले पहचानो, मैं कौन। आप स्वरूप में स्थित हो जाइए, अंतर्मुखी बनिए। आप सभी अपने अपने घरों में आईना रखते हो, बाहर भी जाते हो पर्स में आईना रखते हो। क्यों रखते हो? आप इस फेस को नहीं देख सकते, दूसरे के फेस को देख सकते हो अपने को नहीं, इसलिए आईने का आधार लेते हो। तो ऐसे ही हम दूसरे की कमियां देखते हैं क्योंकि उनका चेहरा जल्दी दिखाई देता है, इसलिए दूसरे के कर्म भी हमारे को सहज दिखाई देते हैं। अगर हम अपना आध्यात्मिकता को जान के पहचान करके स्वयं को देखे, अंतर्मुखी बने, तो कहते अंतर्मुखी सदा सुखी। इसलिए आप आध्यात्मिक ज्ञान को, स्वयं को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, उनको याद करो, तो देखो सब समस्या हमारी एक साथ हल हो जाएगी
और फिर मन की शांति तो आनी ही है। बहुत सुंदर बात दीदी आपने कही, अंतर्मुखी सदा सुखी। बहुत सुंदर। यदि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हुए यदि अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि हम किसी दूसरी बाह्य शक्तियों से प्रभावित ना हो, तो मुझे लगता है कि अपने आप हमारे दिलों में शांति और सुकून आने लगेगा। और अब हम चलते हैं दीदी अगले प्रश्न की तरफ। हमारे साथ हैं मनीषा चांडक और मैं श्रीमती मनीषा चांडक का स्वागत करती हूँ, साथ में आपके प्रश्न का भी।
नमस्ते दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, फिर भी हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक क्यों होते जाता है?
उसका कारण है कि हम पहले दूसरे के कर्मों को देखते हैं, उसमें भी विशेष करके हम उनकी कमियों को देखते हैं, गुणों की ओर नहीं देखते हैं। तो कमी को देखने के हमारा आंख का चश्मा बहुत बड़ा है, सहज देखते हैं। तो गुण अवगुणों को देखते देखते उन अवगुणों का असर हमारे पर होता है, क्योंकि संसार का नियम है इको, जो करेंगे उसका रिप्लाई हमारे को मिलता है। हम दूसरे की कमियों को ना देखें तो हमारा न मन डिस्टर्ब होगा, ना हमारे मन में नकारात्मक विचार आएंगे। क्यों? एक तो दूसरों की तरफ से हमारे को ये बातें आती तो हम दूसरों में उम्मीदें कम करते हैं। कई बारी हम अपने आप में भी उम्मीद नहीं रखते हैं या खुद पर विश्वास नहीं रखते, तो खुद के लिए भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो नकारात्मक की भी एक क्वालिटी होती, एक होता है दूसरों के प्रति, एक होता है स्वयं के प्रति, जो हम स्वयं पर भी विश्वास नहीं रखते। तीसरा होता है, समझो मान लीजिए आपका बच्चा बाहर गया, समय पर नहीं पहुंचा तो हर समय मन में चलता रहेगा, और उसमें आप कभी क्या सोचेंगे, उसका ऐसा तो नहीं हो गया होगा, ये तो नहीं हो गया होगा, वो तो नहीं हुआ होगा, उसमें भी आपके नकारात्मक ही विचार चलेंगे। मेरा बच्चा सुरक्षित है, इतनी खातरी हमें हर समय भी नहीं रहती है। क्यों? कि हम बाहर की समस्याएं देख रहे हैं, बस ये पक्का हो गया किसी समय किसी के भी साथ कुछ हो सकता है। परंतु अगर हमें ये ज्ञान है, समझ है कि हर एक का कर्मों का हिसाब किताब अपना है, कोई घटना बिना कारण नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ कारण होता है, तो मैं एडवांस में क्यों उनके लिए ऐसा विचार करो? हो सकता है दोस्त के पास गया हो सकता है किताब की जरूरत हो, ये कभी भी हमारे मन में विचार नहीं था, नेगेटिव ही आते हैं। इसको रोकने के लिए ये ज्ञान हमें बहुत बहुत मदद करता है। मन हमारा लाइट हो जाता है, मन धीरज की शक्ति आ जाती है। आज हम धीरज खो बैठते हैं, यहां तक धीरज खो बैठते अगर बच्चा बीमार हो या कोई भी मेंबर, दवाई सामने पड़ी होंगी, हम अपनी परेशान इतने हो जाते हैं जो टेबल पे पड़ी दवाई भी हमको दिखाई नहीं देती है। ये बुद्धि में हमेशा एक स्लोगन पक्का कर लो, जो होगा उसमें कल्याण है, तब कहा जाता है जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। ये अगर हमें स्लोगन पक्का है तो कभी भी हम नेगेटिव में नहीं जा सकते।
और मुझे लगता है दीदी कि ये ही जो हम अध्यात्म और धर्म की बात कर रहे हैं, तो अध्यात्म और धर्म की इस परंपरा का यदि हम निर्वाह करते चलें और उसे हम अपनी दिनचर्या में अपना लें, तो मुझे लगता है कि हमें अपने नकारात्मक सोच से बहुत जल्दी छुटकारा भी मिल जाएगा और हम अपनी सकारात्मक सोच से दिशा परिवर्तन कर अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने आपके जवाब में कही है। और अब हम चलते हैं दीदी अगले प्रश्न की तरफ। हमारे साथ हैं श्रीमती प्रीति चांडक, तो मैं उनके प्रश्न का स्वागत करती हूँ।
मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि जो 84 योनियां हैं वो कहाँ तक सच है। बच्चे इस बारे में क्वेश्चन करते तो मुझे जवाब देना नहीं आता।
84 लाख योनियां जरूर हैं, परंतु वो एक पूरे क्वालिटीज हैं, उसमें जीव जंतु पशु पक्षी सब है, परंतु मनुष्य मर करके मनुष्य ही बनता है, वो उन 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। जैसे गेहूं से कभी चना नहीं निकलेगा, चने से मक्का नहीं निकलेगा, कोई भी जैसा बीज वैसा फल, ऐसे जो आत्मा मनुष्य की है वो शरीर छोड़ने बाद भी मनुष्य बनती है, पशु पक्षी जानवर कीड़ा मकोड़ा ये नहीं बनते। उसके लिए हम कहें कि आज जो मनुष्य है कर्म से श्रेय बुरे कर रहा है, जो उसके कारण उनको कहते भी हैं, अगर कोई ज्यादा बोलता है गालियां देता है तो यही कह देते कुत्ते की तरह भौं भौं क्यों कर रहे हैं। ऐसे हर जानवर की उपाधि हम काना कान दे डालते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में होकर के भी उसके कर्मों के कारण उसके पर वो नाम पड़ता है, ना कि कोई योनि में जाता है। ज्ञान की डिटेल जब लेंगे, समझ सकेंगे, जब खुद सेटिस्फाइड होंगे, तब उनको जरूर आप कर सकेंगे।